ओम शांति। आज 4 जून 2017 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 6 अप्रैल 1982 के महावाक्य है दासव अधिकारी आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्वत्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, दोनों ही इकट्ठे हो सकता है। स्व का अधिकार अर्थात स्वराज्य पा सकते हो, त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने, यह तो अनुभव है ना। त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्मा देही व मालिक बन गए। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन निशानी है मन से चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की और अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा। राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट यानी आराम में अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन? दास व अधिकारी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल, शान से परे अर्थात ज्ञान से परे परेशान तो नहीं कर देते हैं। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रहे मौत से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। बाप दादा दास आत्माओं की कर्म लीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते हैं। साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे। दास आत्माएं क्या करत भाई? कहानी याद है, सुनाया था कि चूहा आता चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता, एक निकालते दूसरा आता, दूसरे को निकालते तो तीसरा आ जाता। इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं क्योंकि दास आत्मा है ना। तो कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता और बिचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसलिए बाप दादा को रहम भी आता और मुस्कुराहट भी आती। तख्त छोड़ते ही क्यों है, ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालते कि एक मास से परेशान हूँ, कोई कहते तीन मास से नीचे ऊपर हो रहा हूँ, कोई कहते छह मास से सोच रहा था लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती। लेकिन यह भी सोच लो, जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है, सदा बाप की मर्जी पर चलो। मेरी मर्जी यह है तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन में रहने वाली, स्वकल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो। जैसे कहा जाता है आंख बंद करके चलते चलो, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं होगा, यह आंख नहीं खोलो। यह व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पांव के ऊपर पांव रख कर चलना मुश्किल होता है, वह सहज होता है। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो लेकिन फुटस्टेप बाप के फुटस्टेप पर हो। समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ। मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन की करते हैं। वह डायलॉग फिर सुनाएंगे क्योंकि बाप दादा के पास तो सब सेवा स्टेशंस की न्यूज आती है, ऑल वर्ल्ड की न्यूज आती है। तू दास आत्मा मत बनो, यह है बहुत छोटी सी कर्म इंद्रियां। आंख नाक कितने छोटे हैं लेकिन यह जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती, जाल कितनी बड़ी होती। यह भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराएं, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी? स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मजा होता है? बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल बिना अर्थ होता है। ऐसी रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता बेअर्थ है। दो मास की, छह मास की पुरानी बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात बोलते रहेंगे। ऐसी है यह रूहानी बेहोशी। बातें तो छोटी सी होती हैं, लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखी है आप लोगों के प्रदर्शनी के चित्रों में भी है। जाल खत्म कर लो, मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई, लवलीन हो जाओ, जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है। तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है, आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाऊं। बीज है ही बिंदु, ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। समझा क्या करना है? देखो, दोनों जोन की विशेषता भी यही है। कर्नाटक अर्थात नाटक पूरा किया, अभी चलो लवलीन हो जाओ। और यूपी में भी नदियां बहुत होती हैं, तो नदी सदा सागर में समा जाती है। तो आप सागर में समा जाओ अर्थात लवलीन हो जाओ, दोनों की विशेषता है ना। इसलिए शांत से लवलीन स्थिति में सदा बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। आवागमन का चक्कर तो अब पूरा किया ना, अभी तो आराम से शांत से बैठ जाओ। अच्छा, ऐसे सदा सर्वाधिकारी और सर्वत्यागी, सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, आवागमन से मुक्त, मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले ऐसे राजऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ सभी निमित आत्माएं होना, सदा अपने को सेवार्थ निमित आत्मा हूँ ऐसा समझकर चलते हो। निमित आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। एक, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे, मैं शब्द समाप्त हो जाएगा, मैं के बजाय बाबा बाबा। तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसके तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाते हैं। तो निमित्त समझ कर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो सबसे बड़े ते बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही यह है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, यही सदा स्मृति में रख कर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, यह लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या वहाँ तक रखना यह आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता है कोई नहीं, इसी में नंबर बन गए। तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप को देखो, बाप ने माँ को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर वन नारायण बना, वह सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी। लेकिन बढ़ाने से बड़ा, बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा एक गुणा से चार गुणा हो जाएगी। बाप समान सीट मिली है, अभी इसी सीट पर सेट होकर सेवा को बढ़ाओ। अच्छा, पार्टियों के साथ पहली पार्टी विशेष आत्मा बनने के लिए सर्व की विशेषताओं को देखो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषताओं के गुण गाते हैं। जैसे बाप सभी बच्चों की विशेषताओं को देखते, वैसे आप विशेष आत्माएं भी सर्व की विशेषताओं को देखते स्वयं को विशेष आत्मा बनाते चलो। विशेष आत्माओं का कार्य है विशेषता देखना और विशेष बनना। कभी भी किसी आत्मा के संपर्क में आते हो तो उसकी विशेषता पर ही नजर जानी चाहिए। जैसे मधुमक्खी की नजर फूलों पर रहती, ऐसे आपकी नजर सर्व की विशेषताओं पर हो। हर ब्राह्मण आत्मा को देख सदा यही गुण गाते रहो, वहाँ श्रेष्ठ आत्मा वहाँ। अगर दूसरे की कमजोरी देखेंगे तो स्वयं भी कमजोर बन जाएंगे। तो आपकी नजर किसी की कमजोरी रूपी कंकर पर नहीं जानी चाहिए। आप होली हंस सदा गुण रूपी मोती चुगते रहो। दूसरी पार्टी समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो। जैसे समय महान है वैसे आप भी महान हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है, तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान करूं। सदा इसी स्मृति में रहूं कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने चाहूं बना सकते हूं। संगम युग को यही वरदान है। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहूं। कितने अखुट खजाने मिले हैं गिनती कर सकते हूं। तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहूं। सदा मुख से रत्न निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहूं। महान समय है, महान आत्मा हूं, यही सदा याद रखूं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है सर्व प्राप्तियों की, खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ, तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन है बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु यानी सागर बनो। ओम शांति।